चंद्र नववर्ष यानी लूनर न्यू ईयर या बसंत महोत्सव ऑस्ट्रेलियन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उदाहरण के लिए इस उत्सव के सिडनी में मनाए जाने वाले संस्करण को एशिया के बाहर अपने प्रकार का सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है। तो आज जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति क्या है और ये ऑस्ट्रेलिया में कैसे मनाया जाता है। इस वर्ष चंद्र नववर्ष दिवस 1 फरवरी को है। 2022 टाइगर का वर्ष है। ये बसंत महोत्सव 15 दिनों तक चलता है, जब तक कि लालटेन महोत्सव नहीं हो जाता। डॉक्टर पैन वॉन्ग यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में चीनी और एशियाई अध्ययन में वरिष्ठ लेक्चरर हैं। डॉक्टर वॉन्ग का कहना है कि इसका 4000 साल पुराना इतिहास है, जो जिया या शेंग राजवंश से शुरू होता है।
Lunar New Year is the beginning of a lunar calendar year based on the cycles of the moon. It can be also called the Chinese New Year or Spring Festival. It's celebrated in China and other East Asian countries like Korea, Vietnam, Japan, and among Chinese diasporas in many other countries like Australia. And it has a history of up to 4,000 years, starting from the Xia or Shang dynasty.
Dr. Kai Zhang, Australian National University में संस्कृति, इतिहास और भाषा के स्कूल में आधुनिक चीनी भाषा कार्यक्रम के साथ काम करती हैं। वो कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में चंद्र नववर्ष समारोह दुनिया भर के लोगों के लिए चीनी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशियाई संस्कृतियों के बारे में जानने का एक बड़ा अवसर है।
It is a cultural event of long history and of very rich symbolic meaning embedded in it. It is very important for Chinese Australians and other Australians who's from Korea or other countries originally in southeastern and eastern part of Asia. People outside of the Chinese culture or the Eastern Asian culture, by celebrating Chinese New Year or Lunar New Year, can get to know more about Chinese culture, about Korean culture, about all these different groups of people originally from Eastern Asia and southeastern part of Asia.
Lal Chen Festival, Chandravarsh Divas ke 15th din par ayojit kiya jata hai. डॉक्टर खाई जांग बताती हैं कि हर परिवार अपने बच्चों के लिए एक छोटी लालटेन या कंदील को बनाता है और उसे अपने दरवाजे पर लगाते हैं।
It's called the Lanterns Festival because there is this tradition. Every family would make this little lantern for their children and they would literally light up the lanterns outside their doors. And as far as we can go back to the history, as early as in Tang Dynasty, there would be this large scale event on that day. Children would take their little lamb to go with their family to the market.
Dr. Wong ka kehna hai ki ऑस्ट्रेलिया में चंद्र नववर्ष कई तरीकों से मनाया जाता है। चीनी समुदाय चीनी संस्कृति के बारे में ज्ञान का परिचय देते हुए गतिविधियां और कार्यशालाएं भी आयोजित करता है।
It's celebrated like through food, eating fish, dumplings, gathering with families and also with friends. Chinese communities also held activities and workshops, you know, introducing knowledge about Chinese culture, also line dancing, dragon dance, and color red is considered a very lucky color. It's also a tradition for Chinese to give a red envelope to children.
Iris Tag Chin mein pali badi aur 20 saal pehle Australia mein aa gayi. वो कहती हैं कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के समारोहों में मुख्य अंतर ये है कि वहाँ चीन में चंद्र नववर्ष समारोह के लिए एक लंबी सार्वजनिक छुट्टी होती है। ये एक ऐसा समय है जब चीन में सैकड़ों मिलियन लोग अपने अपने परिवारों से मिलने के लिए अपने घर आते हैं। सुश्री टैंग के अनुसार चीन की ही तरह ऑस्ट्रेलिया में भी चंद्र नववर्ष समारोह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भोजन है।
Personally, I celebrate with my family and friends here in Canberra by preparing loads and loads of food, and we sit around table and make hundreds of dumplings from New Year's Eve. And whenever I take time, I make more than one meal and I store them in the freezer for later, and you can eat them whenever, you know, during the whole New Year celebration often lasts for about 15 days until the Lantern Festival, which falls on the 15th day of Lunar New Year.
हालांकि आधुनिक चीन ग्रेगेरियन कैलेंडर का उपयोग करता है, लेकिन पारंपरिक चीनी कैलेंडर के अनुसार ही छुट्टियों को निर्धारित किया जाता है, जैसे कि चीनी नववर्ष और लालटेन महोत्सव और किंगमिंग उत्सव, जिसे टॉम स्वीपिंग डे के नाम से भी जाना जाता है. डॉक्टर पैन वांग बताती हैं कि पारंपरिक चीनी कैलेंडर में वर्ष की उन तारीखों के बारे में भी होता है जिसे लोग विवाह, अंतिम संस्कार, इधर उधर जाने या व्यवसाय शुरू करने के लिए शुभ मानकर चुन सकते हैं.
The Chinese traditional calendar is lunar solar. It's formed on the movement of the moon and the sun. So it takes into account both the moon's orbit around the earth and the earth's orbit around the sun. So in this calendar, the start of the month is determined by the face of the moon. So as in most lunar calendars, months are either 29 or 30 days long. And the start of the year is determined by the solar year.
Dr. Craig Smith, मेलबर्न विश्वविद्यालय में एशिया संस्थान में अनुवाद अध्ययन में एक वरिष्ठ व्याख्याता हैं. वो कुछ वर्षों के लिए ताइवान और दक्षिणी कोरिया में रहे और दोनों ही जगहों की चंद्र नववर्ष समारोह की उनकी कुछ यादें भी हैं. डॉक्टर स्मिथ कहते हैं कि दक्षिण कोरिया में चंद्र नववर्ष अपने पूर्वजों का सम्मान करने का समय है.
On New Year's Day, everybody wakes up and sets out a meal for deceased ancestors and remember them and offer them drinks. And of course, today, new religions have mixed in with these and old religions as well. So Buddhist families will recite the sutras on Lunar New Year as well.
Dr. Smith ka kehna hai ki Chandra Nav Varsh Samaroh ke kai aise pehlu hain jo Chin ke alawa anya deshon se aate hain. Udharan ke liye lion dancing, jise paramparik roop se Chandra Nav Varsh parade ke dauran pradarshit kiya jata hai. वो कहते हैं कि ये हजारों साल पहले की बात है और हम जानते हैं कि चीन में बहुत सारी परंपराएं, धर्म, संगीत, कलाएं पश्चिमी या मध्य एशियन देशों से आईं, प्रसिद्ध सिल्क रोड के द्वारा. तो ये बहुत संभावना है कि इस परंपरा की कुछ जड़ें चीन के बाहर की हैं. बहुत से लोगों ने इसे भाषाई और ऐतिहासिक विश्लेषण के आधार पर फारसी परंपराओं से जोड़ा है.
When academics look at this lion dance tradition, they actually look back to thousands of years ago. And we've long known that a lot of traditions, religions, music, arts came into China from what we would now call West or Central Asian countries, especially along the famous Silk Road. And it's very likely that this tradition has some of its roots outside of China. A lot of people have connected it to Persian traditions based on linguistic and historical analyses.
एक चीनी राशि वर्ष चंद्र नव वर्ष पर शुरू और समाप्त होता है. प्रत्येक वर्ष 12 वर्षों के आवर्ती राशि चक्र यानी जोडियक साइकिल में एक पशु का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें से प्रत्येक की अपनी प्रतिष्ठित विशेषताएं होती हैं. अगर क्रम से देखें तो ये हैं चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, बकरी, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सुअर. डॉक्टर वांग के अनुसार 12 चीनी राशियों के बारे में एक किंवदंती है कि जेड सम्राट ने एक बैठक बुलाई और 12 जानवरों ने प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करके वहां पहुंचने की कोशिश की. अब जिस क्रम में सब उस बैठक में पहुंचे थे वहीं से ये क्रम बना, जैसे बैठक में पहुंचने वाला पहला चूहा था, दूसरा बैल था आदि.
Start from the Jade Emperor, really, who wanted to convene a meeting. And then there are 12 animals trying to compete and they're trying to get there. And then whoever gets first will be listed first. Like the first one was the rat and the second one was ox. And then other ranks are according to who actually reached the meeting. So it has to do with the legend.
Dr. Wong ka kehna hai ki tiger taakat aur cheezon ko niyantran mein lane ka prateek hai. Duniya ke liye ek aavashyak badlav kyunki manavta COVID-19 mahamari se jooj rahi hai. To hame baagh ki shakti aur taakat hasil karne ki aavashyakta hai. चीजें अभी भी अप्रत्याशित हैं। हम बाघ की तरह चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं और इसका सामना करने में सक्षम होने के लिए और अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिए खुद को मजबूत करें।
Tiger represents leadership, authority, and power and strength. We need to acquire the power and strength of tiger, especially after the pandemic. Things are still unpredictable, you know, speaking of the pandemic at this stage. We've been gone through so many waves of the pandemic in different countries. And if we can get things in control, you know, like Tiger, be brave, face that, to live with the pandemic, to be able to cope with that and strengthen our immunity, strengthen ourselves.